नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कड़ा कदम उठाते हुए 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल को आईटी नियम 2021 के तहत ब्लॉक किया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों के 114 करोड़ से अधिक व्यूज और 85,73,000 सब्सक्राइबर्स थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि ब्लॉक हुए यूट्यूब चैनलों द्वारा फेक और भारत विरोधी सामग्री फैलाई जा रही थी। ब्लॉक किए गए चैनलों पर आरोप है कि ये भारत में दहशत पैदा करने, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने और सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने वाले कंटेंट लोगों को परोस रहे थे। इसके अलावा जो भी खबरें इनमें प्रसारित हो रही थीं, वो असत्यापित थीं। इससे पहले इसी साल जुलाई में भी भारत सरकार ने 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इन यूट्यूब चैनलों और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को पूरी तरह से बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े कारोबारियों में शुमार मुकेश अंबानी की रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को राधा कृष्णा दमानी के डीमार्ट ने टक्कर देने का बड़ा प्लान बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीमार्ट अपने रिटेल स्टोर की संख्या में 5 गुना इजाफा करने का प्लान कर रहा है, जिससे रिटेल सेक्टर में रिलायंस रिटेल को कड़ी चुनौती दी जा सके। डीमार्ट का परिचालन करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड मौजूदा समय में देश की चौथी सबसे बड़ी रिटेल चेन कंपनी है। कंपनी के सीईओ नेवल नोरोहन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे पास पूरे देश भर में वर्तमान में 284 रिटेल स्टोर हैं। हमारा लक्ष्य भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाकर 1500 करने की है। हालांकि उन्होंने इसकी टाइमलाइन और निवेश को लेकर कुछ नहीं कहा। डीमार्ट और रिलायंस दोनों ही रिटेल सेक्टर में बड़ी योजना पर कार्य कर रहे हैं। मौजूदा समय में डीमार्ट की स्थिति एक रीजनल रिटेल कंपनी है, जिसका सारा परिचालन महाराष्ट्र और कुछ राज्यों में सिमटा हुआ है, जबकि रिलायंस का कारोबार पूरे देश भर में फैला हुआ है। रिलायंस एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी ने कुल 2500 नए रिटेल स्टोर खोले थे। दूरसंचार विभाग को अग्रिम भुगतान करने के कुछ घंटों के भीतर ही एयरटेल को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र मिल गया। भारती एंटरप्राइजेस के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने बृहस्पतिवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब दूरसंचार विभाग ने अग्रिम भुगतान करने के दिन ही स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र सौंपा। मित्तल ने एक बयान में कहा, एयरटेल ने स्पेक्ट्रम बकाए के लिए 8,312 करोड़ रुपए का भुगतान किया और कुछ घंटों के भीतर निर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए आवंटन पत्र दे दिया गया। वादे के अनुसार स्पेक्ट्रम के साथ ई बैंड आवंटन किया गया। कोई कमी नहीं, कोई देरी नहीं, सत्ता के गलियारों के कोई चक्कर नहीं और कोई लंबा दावा नहीं। कारोबारी सुगमता पूरी तरह प्रभावी है, मित्तल ने कहा। डॉट के साथ मेरे 30 से अधिक वर्षों से अधिक के अनुभव में ऐसा पहली बार है। व्यवसाय ऐसा होना चाहिए। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का मानना है कि छोटी कार खंड को नए उत्पादों के साथ ऊर्जावान बनाए रखने की जरूरत है। कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकियुची ने बृहस्पतिवार को ये बात कही। ताकियुची ने कहा कि एसयूवी की बिक्री में वृद्धि के बावजूद ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग अभी भी हैचबैक को पसंद करता है। एमएसआई ने अपनी छोटी कार ऑल्टो के 10 का बिल्कुल नया संस्करण बृहस्पतिवार को बाजार में उतारा है। इसकी शोरूम कीमत 3.99 से 5.83 लाख रुपए के बीच निर्धारित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल के इस महीने के अंत में कर्मचारी स्तरीय समझौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए यहां आने की उम्मीद है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। गवर्नर ने कहा कि राहत पैकेज के लिए आईएमएफ के साथ श्रीलंका सरकार की बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। श्रीलंका अभी अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिससे देश में ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। हाल के दिनों में 2.2 करोड़ लोगों के द्वीपीय राष्ट्र में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश से भागने और अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। समाचार पोर्टल newsfirst.lk ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के हवाले से कहा कि आईएमएफ कार्यक्रम अच्छी प्रगति कर रहा है। इसके अलावा एक आईएमएफ मिशन के इस महीने के अंत में श्रीलंका का दौरा करने की योजना में है, ताकि एक कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचा जा सके। श्रीलंका पर $51 अरब का विदेशी कर्ज बकाया है, जिसमें से $28 अरब का भुगतान 2027 तक करना जरूरी है। किफायती एयरलाइन स्पाइसजेट और स्विस फर्म क्रेडिट स्विस एजी ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि उन्होंने अपने वित्तीय विवाद को सुलझा लिया है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने स्पाइसजेट को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपनी अपील वापस लेने की अनुमति दी। मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में क्रेडिट स्विस एजी को कथित रूप से बकाया भुगतान न करने के कारण एयरलाइन को बंद करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश NV रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति CT रवि कुमार की पीठ ने आदेश में कहा, एक समझौता है जो 23 मई 2022 को सहमति की शर्तों के अनुसार हुआ है। इसे देखते हुए ही दोनों पक्ष समझौते से संतुष्ट हैं और याचिकाकर्ता द्वारा SLP को वापस लेना चाहते हैं। तदनुसार आवेदन की अनुमति दी जाती है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।